बस एक स्टेप ऊपर जाइए। और कुरान की तर्तीब पे भी प्यार आता है कि दूसरे पारे की पहली आयत, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। दूसरा तकाजा क्या है कि हम इंसानियत को रब से जोड़ें। या फिर मुझे इजाज़त दीजिए एक जुमला बोलने की, मैं हर दर्स में बोल रही हूँ क्योंकि मसला अमूमी है। हर शहर, हर मुल्क, हर बस्ती के मुसलमानों को मैंने आज के दौर में जिस चीज़ पे परखा वो क्या है, हमारे यहाँ नेकी का आला तरीन मुकाम अभी भी क्या है कि अपनी इबादत पक्की कर दो, 5 वक्त के नमाजी, चलो फ़र्ज़ हो गए, अब तहज्जुद शुरू। इसके बाद दूसरा काम क्या हम करते हैं, फ़र्ज़ के साथ नफिल सुन्नत, हज कर लिया, उमरा। यानी आज भी हमारी सोच 2018 में ले जाइए, किसी बंदे से दीन का आला तरीन मुकाम पूछिए, कौन बड़ा नेक है, कौन बहुत मुत्तकी है, तो कहते हैं नमाज, रोज़े का पाबंद, हज, ज़कात, सदका, खैरात। बात समझने की कोशिश करेंगे तो आएगी, वरना आपको गलती लग सकती है यहाँ मेरी इस बात पे। हालांकि आपको पता है कि ये सब कुछ शख्सी इबादत है। बस मैंने आज सुबह फजर पढ़ी, पढ़ी ना, मैंने आज इशराक पढ़ी, मैंने आज सूरत कहफ पढ़ी, मैंने आज जोहर की नमाज़ पढ़ी। आपको क्या लगे, आपको क्या मिला, इस्लाम को मैंने क्या दिया? ये जो पहला तकाजा था ना, अपने आप को मुसलमान बनाओ, शख्सी तरबियत। इस पे अल्लाह के नबी ने 13 साल मक्का में कोशिशें की, और ये जो 100 कुछ लोग तैयार हुए थे ना, फिर वो सतून थे दीन के। लेकिन दूसरा तकाजा आज हम में से, तो मेरा गुमान है गालिब है कि 90%+ वालों की तो लिस्टों में ही नहीं है, हासिल कैसे करेंगे? देखिए ना, आपने एक चीज़ पढ़नी है अभी तो पढ़ लेंगे ना, लिस्ट में लगा हुआ है कि अभी सैलड भी बनाना है, अभी ये करना है, तो बना लेंगे। तो जो चीज़ आपके दिल दिमाग की तख्तियों में नहीं बनानी है, वो कभी बनाते हैं आप? हम वही काम करते हैं ना जो सोचा होता है। आज उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पे हमारे इंडो पाक कल्चर में बहुत सारों ने ये सोच लिया कि खुद नेक से नेक से नेक से नेक बनते जाओ, और उम्रे कर लेते हैं और हज कर लेते हैं। लेकिन ये जो सेकंड फेज देने लगी हूँ ना, इस पे आने वालों के लिए ख़ास नाम है, तबलीगी जमात, मरकज़ दावा, और इंग्लिश में कुछ लोगों के नाम के ये आजकल दावा कर रहे हैं। जबकि अल्लाह के इस कलाम का आपसे मुझसे दूसरा तकाजा क्या है कि अब तुम बदल गए हो ना, तुम्हारी इसलाह हो गई है ना, कू अनफुसकुम अब अहलीकुम नारा, अब निकलो, मुसलमानों को कुरान से जोड़ो और नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम से जोड़ो। देखिए एक जुमला बोल देती हूँ, नबी सल्लम ने दावत दी गैर मुस्लिमों को इस्लाम की, उधर सुलह हुदैबिया के थ्रू ज़रा सा अमन चैन हुआ, एक काम जो अल्लाह ने दिया था उस पर लगा कि अब जंग कोई नहीं होनी, मक्का वालों से हम ज़रा से सिक्योर्ड है, 10 साल तक अब हम आराम से बैठेंगे, हो गई ना बात, अब घर जाके सो नहीं गए, वेकेशन प्लान साइन नहीं किया, अच्छा अब जंग नहीं, चलो दावा करते हैं। उस वक्त के कैसरो किसरा, रोम और फारस और ईरान, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के हुक्मरानों को अल्लाह के नबी ने खतूत लिखे, पैगाम दिया, दावत का मैदान खोल दिया। तो याद रखिए, 2/3 ऑफ रिलीजन इज़ दावा, दावत दो। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, सूरह आले इमरान में 2 आयतें आती हैं इस बारे में डायरेक्ट, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, तुम में से कोई एक उम्मत ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे। और अल्लाह ने तो कह दिया, वकुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम हो वो ग्रो, तुम हो वो बेहतरीन जमात कि जिसको पैदा ही किया क्या, उखरिजत, तुम्हें दुनिया में भेजा ही इसलिए गया कि तुम लोगों को अल्लाह से जोड़ो। देखिए अल्लाह के नबी अगर खुद नमाज़ें पढ़ते रहते, और पढ़ते थे, 40 साल तक आप बड़े आबिद और जाहिद इंसान थे। आप सीरत पढ़ के देखिए, नबी सल्लम एप्पल ऑफ द आई थे, इंग्लिश में आप कहते हैं, और उर्दू में कहेंगे आंखों का तारा थे। क्यों ना हो ऐसा शख्स जिसने कभी किसी को दुखी नहीं देना, जो गरीबों की मदद कर दे, बेवाओं के बोझ उठा दे, जो किसी पास बैठे को ना दुखे, उसको कौन बुरा कहेगा? अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करते थे सब लोग कि इवन नबूवत से पहले खिलफुल फजूल का माहदा नबी सल्लम के हाथों हुआ, हजर अस्वद की तनसीब का काम अल्लाह के नबी से लिया मक्कालों ने, कहते थे अंता अमीन सादिक व अमीन, तुम सादिक तुम अमीन। आप ज़ाती इबादत करते रहे, कोई आपको नहीं छेड़ता। अब ये जो बात कह रही है ना, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसको कहना चाहिए फॉरगॉटन सुन्नत, भूली बिसरी सुन्नत है। आपने नमाज पढ़ी, फ़र्ज़ पूरा हुआ नहीं, आपके साथ सोए हुए शौहर ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये है सेकंड फेज़। अब अगला मरहला ये है, आपने अल्लाह से मदद मांगी, कोशिश की, ख्वाहिश रखी, दुआ की, मियाँ साहब ने नमाज़ शुरू कर दी, पढ़ दी, मुतमईन नहीं, इन बच्चों ने पढ़ी है, एक दो चार बच्चे, वो बाहर सर्वेंट क्वार्टर में जो मुलाज़म है तीसरे फेज़ पे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, उन्होंने पढ़ ली, ये नेबर कौन है, ये कौन है, इस तरह दायरा कार बढ़ता है दावा का। कुल्लुकुम राइयुन, तुम में से हर एक राई है, और कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयति ही, और तुम में से हर एक से उसकी राइयत के बारे में सवाल होगा। मुसलमान नहीं सो सकता, मुसलमान कभी जॉबलेस नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह ने आपको मुझे वर्ल्ड वाइड काम दी, इंटरनेशनल कंपनी में काम दे दिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अपनी हिदायत के बाद दूसरे की हिदायत की फ़िक्र लगना, ये खुद हिदायत पे होने की अलामत है। और आप खुद हिदायत पे हैं, दूसरों की हिदायत की कोई फ़िक्र नहीं। आप देखिए, हम एक दावत के लिए निकलते हैं, हम एक शादी के लिए निकलते हैं, हम एक वलीमे के लिए जाते हैं, हम कोई फौत होता है उस पर जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है हम उसकी बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, यही है ना सोशलाइजिंग। हकूक़ुल इबाद ही के नाम पे करते हैं ये सब कुछ। हम आज अपनी ज़िंदगी का, अगर मेरा ख्याल है 60-75% हमारा सिर्फ सोशलाइजिंग इन रस्मी कलामी ट्रैवलिंग आने जाने पे लग रहा है, या कोई हमारे घर आ रहा है तो हम खाने पका रहे हैं, ठीक है खाना खिलाना बड़ी प्यारी बात है, अतिम उत्ताम जन्नत में ले जाने वाला काम है, पर हम क्यों खिला रहे हैं बाद दफ़ा, क्या वो उन्होंने भी खिलाया था तो हमने भी खिलाना है, नई दुल्हन आई है तो अब खाना तो पकाना ही पड़ेगा, और अब फलां आया, यानी एक रस्मन कलामन ज़्यादा चीज़ें हो गई। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हम अपनों ही के सारे हकूक़ पूरे करते हैं, लेकिन क्या आपको मुझे पता हमारे अपने ख़ानदान के ऊपर से नीचे, यहीं से शुरू करें जो तरतीब दी, इनके दीन का क्या हाल है? हमारे ख़ानदान में कितने लोग हैं, मेरे कितने मामू 5 वक्त के नमाजी हैं, मेरे कितने चचा चचियाँ 5 वक्त की नमाजी हैं, मेरे कितने खालू फूफा, अपने करीब से शुरू करें, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट फेज़, मेरे खाला के बच्चों में कौन नमाज़ पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, और मेरे चचाओं के बच्चों में कौन नमाजी है, और सबसे बढ़ के जिन मेरे रिश्तेदारों के घर दिन रात खाती आती पीती हूँ, क्या उनके माल में कोई ऐसा जरासीम तो नहीं है जो उनकी भी दुआएं कबूल करने से रोक दे, मुझे भी रोक दे, ये गम लगना है। आप ये ना सोचिए कि दावा का मकसद ये है कि आप जाके किसी सड़क पर खड़े होकर नॉन मुस्लिम्स को कुरान बांटने लगें, यहाँ तो मुझे उस मौजू पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम बाहर वालों को अल्लाह ने शर्फ दिया, मैं कहती हूँ ये ऑनर है, ये वो खूबसूरत ऑनर है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दे। कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को कहा था कि अली तेरी कोशिश से अगर एक बंदा अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, तो तुझे 100 ऊँटों के मिलने से ज़्यादा प्यारी चीज़ है ये। हालांकि यहाँ भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ठीक है, मैंने खुद ही अभी कहा कि इस मुल्क में 99% मुस्लिम्स हैं, तो आपके पास सिर्फ 1% चांस है अगर वन बाय वन दावा करने चाहते हैं, यानी कुफर से इस्लाम पे बुलाते हैं। ठीक है, अल्लाह ने आपको महफूज रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करें, क्योंकि पकड़ हमारी होनी है जो हम बाहर के मुल्कों में बैठे दौलत कमा रहे हैं और हम आसाइशों में जी रहे हैं, और अगर हम दावा नहीं कर रहे, एक मकसद है सिर्फ गैर मुस्लिम मुल्क में रहने का कि तुम दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे बन के फिरो, वो एक इशू है आपका नहीं, इसलिए इसको छोड़ दें। जो बाहर से सुन रहे हैं उनको तो मैं दिन रात ये बात सुनाती हूँ, आज उसका मौजू नहीं है, लेकिन आपका पाकिस्तान में रहने के बाद बुनियादी फरीज़ा आज के मुसलमान को कुरान से जोड़ना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देंगे, मुस्लिम को कुरान की दावत देंगे। आज हमारा कुरान से क्या ताल्लुक़ है? फिर सारे सवाल दोहरा ले, आपके बच्चों का कुरान से क्या ताल्लुक़ है, आपके शौहर का क्या ताल्लुक़ है, आपके खालाओं का, आपकी फूफियों का, आपके मामुओं का, आपके चचाओं का, आपके नेबर्स, आपके मुलाजिम, यानी आज हमें ये दर्द लग जाए कि मैंने खुद भी और मैंने अपने प्यारों को अल्लाह की इस किताब से जोड़ना है। अच्छा, आज को ये करने लग जाए ना तो ज़रबुल मिसल बन जाता है खानदान। हाँ, वो आंटी वो कराती रहती हैं दर्स, वो आंटी को कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया, ये आंटी आंटी वो आंटी एक मशहूर है जैसे नाम, हाँ फलां आंटी हमारी बड़ा दावा का काम कर रही हैं, चले और किसी के कोई एक अंकल होंगे, तो भाई आप क्या करें, हम तो कुछ और कमा रहे हैं। याद रखिए, जिस तरह से हमारे मर्द माल कमाने की कोशिश करते हैं ना, इससे ज़्यादा तड़प हमें नेकियां कमाने की होनी चाहिए। नमाजी बहुत हैं आज माशाल्लाह, लेकिन उस नमाज के बाद इन नस सलात तनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर नहीं लिखता। बात समझ गया? तो अब ये जो दूसरा मैं आपको मनहज दे रही हूँ, इसमें डिफरेंट लेवल है। अपने घर से, ज़ुबान से, बच्चों से बात करें। फैसलाबाद का दर्ज जिन्होंने सुना है, नहीं सुना शॉरल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह जाके सुन लीजिए। अपने यंग होते बच्चों को कैसे कुरान से जोड़े, थोड़ा सा मैंने उसका हिंट दिया था। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, आपका मेरा दर्द हम गम ये हो जाए कि कम अज़ कम हमारे लोगों को, अपने इर्द गिर्द वालों को तो कुरान समझ आ जाए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये होगा। आज के बाद अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। लोग तो कहते हैं नया पाकिस्तान, आप अपना नाम लें अपने नाम के साथ के मैं एक नई हूँ। हमारी एक सिस्टर है बाहर के मुल्कों में, वो जब कोई बात सुनती है ना, फिर जो उनका मैसेज आता है, आज एक नई अपना नाम लेती हैं, और जो भी उनका नाम, मसा फातिमा ले लेती हूँ, आज एक नई फातिमा पैदा हो गई है, आज के इस दर्द से एक नई सोच आ गई। तो मैं उसको हंसती हूँ, तुम कितनी दफ़ा पैदा हो गई? मतलब उनका क्या होता है कि मुझे आज कुरान ने एक नई सोच दी है, फिर वो उस पर अमल भी करती हैं, कभी अपने बहन भाइयों में दावा, कभी कुछ। तो आज आपने, मैंने एक सोच यहाँ से लेके उठना है कि हमने कुरान की कंपेन शुरू करनी है। ये अल्लाह का कलाम है जिसने आपको मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ दी है। आज इस कुरान को उठा लीजिए ज़िंदगी से। अल्लाह की कसम कहती हूँ कि एक मरीज का ऑक्सीजन मास्क हटाएं तो वो चंद सांस नहीं ले पाता। आज अगर ये कुरान इंसानियत से उठा लिया जाए और अल्लाह हमें हिदायत दे, हम मुसलमानों ने उठाया तो हुआ है लेकिन बंद कुरान उठाया हुआ है। और जब मैंने सूरत फुरकान की आयत 30 आपके सामने रखी, वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआनी महजूरा, हम उम्मीद लगाए बैठे थे क़्यामत के दिन नबी की सिफारिश की रखी हुई है ना, उम्मीद शिफात होगी, यहाँ शिकायत लग रही है। जाके पढ़िएगा 19वें पारे के पहले रुकू में ये लेसन मिलेगा आपको कि ये है वो मेरी कौम जिसने कुरान को पकड़ के भी छोड़ा हुआ था। ये नहीं कहा छोड़ दिया, एक इस पर लेक्चर भी मौजूद है, कुरान को पकड़ के छोड़ना, पिछले साल शायद बनना था, काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। आज पकड़ा तो हुआ है माशाल्लाह, बंद कुरान की बड़ी ताज़ीम है। गिर जाए तो आटा वज़न का तोल के देते हैं, पड़ा हो तो बैक नहीं करते, बड़े छपवाते भी हैं, रमज़ान में बांटते भी हैं, लेकिन खुला कुरान इसको पकड़ने की ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी का एक स्लोगन बनाए। तकरीबन मुझे यहाँ शायद आए हुए आज गुमान कर रही हूँ कि 20 दिन हो गए होंगे, कम ही हुए होंगे, लेकिन 18-20 डेज मैं खामोशी से एक एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। हर बंदा दौड़ रहा है, नफसी नफसी मसरूफियत, भाग दौड़। पहले एक फैमिली भागती थी इकट्ठी, अब एक फैमिली के 5 लोग अलग अलग भाग रहे हैं। यानी मैं हर साल आती हूँ तो मैं चेंजेस फील करती हूँ, क्योंकि आप तो यहाँ रहते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं पता चलता ना। पहले फैमिलीज थी, एक गाड़ी थी तो वो गाड़ी सबको ले लेके इधर जा उधर जा घूम रहा है। एक दावत है तो सब उस दावत में इकट्ठे जाते थे। एक शादी थी तो सब जाते थे। एक मारूफियत मस, यानी एक ऐसे छोटे छोटे यूनिट थे। अब दिन ब दिन मुझे लगता है कि अगले 5 साल बाद में वेस्ट के स्टाइल जो, यानी मोस्टली हमारे जहनों में आता है उसमें, और हमारे इस प्यारे पाकिस्तान के स्टाइल में अब 19-20 का फ़र्क भी नहीं रहेगा। हर बंदे की अपनी ओन, अपनी गाड़ी, अपना फ़ोन, अपना मुलाजम, अपना एजेंडा लेके सुबह उठ के फिरता है। आज मेरे ये काम है, मुझे गाड़ी दे दें बेटी, ये मुझे इधर जाना है, मेरा ये वहाँ। तो वेस्ट भी तो यही करता है, वहाँ तो एक घर में रहते हुए लोग शायद कई दफ़ा एक हफ्ते में एक दफ़ा मिलते होंगे, लिख लिख के पर्चियों पे लोग बात करते हैं। ये आपने कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, किसी हद तक ये चीज़ वहाँ थी, एक्सेप्टेड हो गई। अब तो क्या करें जी, हर एक की मसरूफियत है। यहाँ भी अब वही हालात बनते जा रहे हैं। मसरूफ़ तो हम हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए खुद से, मैं इतनी मसरूफ़ रहती हूँ करती क्या हूँ? मेरा वो मिशन जो नबी का मिशन था, और आपसे भी पूछती हूँ, मेरा लिए 3रा दिन हो गया मैं हर एक से एक चीज़ पूछ रही हूँ, आपके बल्कि इधर ही पूछी थी लाहौर में भी, एक सुन्नत जो नबी सल्लम ने डे 1 से लास्ट डे तक नहीं छोड़ी वो कौन सी थी? किसी ने कहा मिसवाक, किसी ने कहा फजर की सुन्नतें, किसी ने कहा कि वो जोहर के फ़र्ज सुन्नत, सब ठीक है माशाल्लाह, लेकिन आपको तो ये भी चीज़ें तदरीजन ग्रेजुअली फ़र्ज हुई थी। एक सुन्नत डे 1 से पकड़ी और आखिरी दिन तक नहीं छोड़ी, कौम फानजर, खड़े हो जाओ। सूरह मुद्दसिर बिल्कुल शुरू में नाजिल हुई थी, سورت مزمل کی طرح. ادھر کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل اٹھیے اور راتوں کو اب تھوڑا سوئیں تھوڑا جاگیں. یعنی وہاں قیام فی اللیل تھا، اور ساتھ ہی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھیے، اب سونے کے دن چلے گئے ہیں، اٹھیے اور جائیے لوگوں کو ڈرائیے. اور آخری دن تک آپ نے دنیا سے جانے تک یہ کام کیا، آخری وقت تک لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی حفاظت کرنا اور اپنے مملوکوں کی حفاظت کرنا. اور حجۃ الوداع جو 2-3 مہینے پہلے ہوا آپ کی زندگی کے آخری دنوں سے، اس میں آپ نے سب کے سامنے گواہی دلائی تھی کہ بولو میں نے اللہ کا پیغام دے دیا. کہا دے دیا، حل بلغتا، کہا بلغتا نہیں بلکہ وعدہ دئی تھا، حق بھی ادا کیا. یہ ہے مستقل سنت. ایسے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کم فانذر پہ کہ 23 سال کھڑے رہے. اور یہاں پھر وہ بات سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے، ہم اپنے اوپر کچھ بھی کام کریں لوگ ہمیں برا نہیں کہتے الا ماشاءاللہ. لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کب بگڑتا ہے؟ جب ہم دوسروں کو ان کی برائیوں پہ روک ٹوک شروع کرتے ہیں. نفس صلی اللہ علیہ وسلم اگر اقرا بسمی ربی کلذی خلق والا پیغام لے کر نہ آتے نا ہرا سے، تو مکہ والوں نے آپ کے پاؤں دھو دھو کے پینے تھے. 40 سال تک صادق اور امین کا لقب اسی قوم سے ملا جنہوں نے بعد میں کاہن، مجنو، دیوانہ اور نہ جانے کیا کچھ کا. یہ کس کام کا تحفہ تھا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. آج ہم اپنے گھروں میں اپنے جوان بچوں میں کسی کو ذرا سا دعوی ایکٹیویٹیز سے سرگرم ہوتا دیکھیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس کا رشتہ کون کرائے گا؟ یہ تو ملا ہی بنتا جا رہا ہے، یہ تو تبلیغی جماعت بن گیا. یعنی نام لے لے کے ہم بولتے ہیں اور ہم خود کو کہتے ہیں اہل سنت ہیں. چلیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، مجھے بھی اللہ اہل سنت ہونے کی توفیق دے. کتنی سنتیں میری زندگی میں، اور آپ ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے اور بھی توفیق دے. یہ بتائیے کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ کو، کتنی حدیثوں پہ آپ کا عمل ہے. بات سمجھ گئے، لفظی تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ جو مرضی کہتے رہے، لیکن آپ کا میرا کام دعویٰ، اس کی تڑپ رکھے. اور اسی کے اندر پھر قرآن کی تعلیم اور تربیت بھی آتی ہے. سب سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا میں قرآن پاک پر ایمان لاتی ہوں؟ پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ سب دل کی گہرائی سے کہیں گے جی. اور اللہ کی قسم میرا آپ میں سے کسی ایک کے بارے میں 0.1% بھی شک نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے، الحمدللہ. ہاں یہ بات میں اتنے وثوق سے وہاں نہیں کہہ سکتی جو جنریشنز اب قرآن سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہیں اور وہ سوال کرتی ہیں آ کے، آپ کو کیا پتا ماما کہ قرآن ہی ٹھیک ہے. ماما میں اپنے دوست کو کیوں قرآن کی دعوت دوں؟ میں اس کے کہنے پہ بائبل کیوں نہ پڑھ لوں؟ یہ چند پرسنٹیج بہت لیس ہے، لیکن الحمدللہ ہم سب کا قرآن پر ایمان ہے نا. چلیے اگلا سوال. اور یہ جو 5 باتیں نا، یہ قیامت کے دن اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم سے پوچھنی ہے. دوسری بات ہے کہ کیا میں اس قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھتی ہوں؟ ماشاءاللہ 99% مسلم آبادی ہے، لاکھوں حافظ ہوں گے ادھر، اور لاکھوں نہیں تو ہزاروں قرآن کے ٹیچرز بھی ہوں گے. آج سے اپنے لیے یہ کام بنائیے، میں نے اپنا قرآن ٹھیک کرنا ہے، سنا لیں بس. آپ کو پتہ نہیں ہے میں ٹھیک پڑھتی ہوں کہ غلط. ایک اس کا سمپل کرائیٹیرین بتاؤں، آپ قرآن پڑھیں اور آپ کا اور پڑھنے کو دل کرے نا تو آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اور قرآن پڑھیں اور اٹک ہے اور دل میں شک ہے صحیح پڑھتی ہوں غلط پڑھتی ہوں تو ٹھیک نہیں پڑھ رہے آپ. اللہ نے ایک چیک وال لگائے میں کہ رک جاؤ ادھر ہی، قرآن ٹھیک کیجیے. ابھی ماشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے، ایک ایک نے 5-5 قرآن بھی پڑھنے ہیں، تو غلط تو نہیں پڑھنے نا، تو کوشش کیجئے اپنا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا بھی قرآن ٹھیک کروائیں. تیسری چیز، جب قرآن پڑھتی ہوں اور سنتی ہوں سمجھ آتی ہے؟ سچ بتائیں گونگی ماں اور بچہ اس کی بات سنتا، اشارہ ہی سمجھتا نا. آپ کا بچہ گونگا ہے اور آپ اس کی بات نہیں سن پا رہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی محرومی ہے کہ آپ کے پاس قرآن، 20 قرآن تو اس گھر میں ضرور ہوں گے مجھے امید ہے آپ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے اپنے گھروں میں 10-10، 12-12، 20-20 قرآن ہوتے ہیں. آج اس قرآن کو یوں کھولیے گا پیج، اگر آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کا قرآن کہیں سے کھولیں ऐसे ही इधर है तो मुझे दे, मैं आपके साथ एक्टिविटी करती हूँ। सादा कुरान, कुछ एक लफ्ज़ ना लिखा हो, बाद में दे दीजिएगा। पढ़ूँ भला कहाँ से पढ़ सकती हूँ? फिर आप खुद से पूछे, नावल पढ़ूँ तो सारा समझ आता है, सुबह का अखबार खोलूँ बड़ी छोटी शह सुर्गियाँ सारी आती हैं, और अगर मैं कोई फैशन मैगजीन खोलती हूँ एक एक लफ्ज़ पढ़ती हूँ तो ये कुरान क्यों नहीं समझ आ रहा? ये बहुत बड़ा अलमिया है, समझ ही नहीं आता। दिन में 5 बार कुरान पढ़ते हैं नमाज में, कहीं ना कहीं से तो पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा के बाद, और समझ ही नहीं आ रहा। ये है असल में हमारी रूह के ऊपर बोझ जिसने हमें घबराहट में डाला हुआ है। फिर चौथी चीज़, अब जिसके साथ ही अगला तकाजा शुरू होगा, मैंने शुरू में बात की थी कुरान के हमसे 3 तकाजे हैं। पहला कि आप सब बोले, खुद को बंदा समझो, अपना मुकाम पहचानो। जब मुकाम पहचान लिया तो हुक्म मानेंगे, फिर उसमें सारी फर्द की इबादत सब कुछ आ गया। दूसरा तकाजा जो अभी डिस्कस किया है वो क्या था? कि आप दूसरों के साथ चलो, उसी में हम अपने कुरान पे आ गए। तीसरा तकाजा जो रब का है, इस कुरान को इम्प्लीमेंट कर दो, निफाज़े कुरान, कुरान का निज़ाम नाफिज करो। आप कहते हैं हाँ वो सदर ज़ियाल हक साहब ने कोशिश की थी, वो उन्होंने ज़कात कमेटियाँ बनाई थी, हाँ हम भी कहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत आ जाए, नहीं वहाँ से नहीं आएगी। आपने तो ज़िप को ऊपर से बंद करना चाहा, ज़िप नीचे से बंद होती है, सिरों को जोड़ें। आपकी मेरी इस ज़िंदगी में, हमारे 5 से 6 फुट के इस वजूद में, और हमारे इस कनाल दो कनाल के घर में, और हमारे 150 लोगों के ख़ानदान में जब कुरान नाफिज होगा ना, तो ये पूरी दुनिया में नाफिज हो जाएगा। हम कहते हैं अमेरिका में अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए हम भी कर लेंगे, और वो ओबामा की बेगम निकाब करेंगी तो हम भी कर लेंगे, और अगर इंग्लैंड में अगर इस्लामी सज़ाएं मुतारफ़ करा दी जाए तो हम भी देंगे। ये बिग क्रॉस है। नबी सल्लम की वर्किंग मेथडोलॉजी में कुरान का निफास फ़र्द से था। वो खुदा खौफी पैदा कर दी कि अगर किसी से गुनाह हो जाता था ना तो वो घर नहीं जाता था, वो नबी के पास आकर इकरार करता था और कहता था कि अल्लाह के नबी हद लगवा दे, गुनाह सोने नहीं देता। आपने कई दफ़ा वाक़या सुना होगा, गम दी औरत जिना हो गया, चूंकि इक्का दुक्का वाक्यात थे तो हदीसों में आ गए। कहा अच्छा, अल्लाह के नबी के पास आ गई, कहा अल्लाह के नबी गुनाह हो गया, आपने इधर उधर मुँह कर लिया, आप नहीं सुनते थे लोगों कैसी बातें, आप दोबारा बोल रही है, दोबारा बोल रही। आपने कहा शायद तुझे गलती लग रही है, कहा नहीं, फिर आ गई, कहा अल्लाह के नबी अब तो बच्चा है पेट में, और भी तस्दीक हो गई, अब क्या करूँ, कहा मुझे हद लगा दें, कहा हद क्यों लगाऊँ, बच्चे का क्या कसूर है, बच्चा पैदा होगा तो आना, और वो छोटा सा बच्चा लपेट लपाट के आ गई, अल्लाह के नबी अब पैदा हो गया, अब मुझे हद लगा दे, कहा अभी तुझे हद लगा दी तो ये बच्चे को कौन पालेगा, इसको दूध पिला, जब खुद रोटी खाने के काबिल होगा फिर आना। और रिवायत में तो चंद महीने के बच्चे में रोटी का टुकड़ा पकड़ा कर वो माँ आ गई कि अल्लाह के नबी गुनाह सोने नहीं दे रहा, अगर मैं इस हाल में मर गई तो मेरा अंजाम क्या होगा। ये होता है दीन का निफास। याद रखिए, आपके मेरे घर, आपकी मेरी शादी, आपका मेरा किचन, आपकी मेरी तिजारत, यहाँ इस्लाम नाफिज होगा, ये मुल्क पूरे का पूरा मुस्लिम हो जाएगा। आप कहते हैं गवर्नमेंट बनाए सलात कमेटियाँ, नमाज़ें पढ़वाओ, तो जो नहीं पढ़ते वो उस वक्त बाथरूमों में घुस जाएंगे। बात समझ रहे? बाहर से कभी भी इस्लाम पे निफास नहीं होगा, ये आपके मेरे घर से शुरू होगा। हम सुन्नत की कितनी बात करते हैं, अगर मैं मौजू छेड़ दूँ ना कि ये बताइए कि नमाज की कितनी रकतें हैं, और मैं आपको भी माशाल्लाह मौका दूँ, मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ दब जाएगी, सब की ऊँची होंगी। कोई कहेगा 12 रखते, कोई कहेगा 17 रखते, कोई कहेगा इतनी। चलें तरावी कितनी है, 8 के 20, 20 कुछ बोलेंगे, 8। उम्र ने कितनी पढ़ी, इतनी बहस लंबी चढ़ेगी अल्लाह की पनाह। बात समझ, नमाज में हाथ कहाँ बांधने चाहिए भाई, रफुल दैन करना चाहिए कि नहीं, अल्लाह अकबर 3 दफ़ा करना चाहिए कि नहीं। अब चुप है, अब आप समझदार हो गए। आज हमारे सारे झगड़े नबी की इन सुन्नतों पे, मरने वाले पे फातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ऊंची आमीन कहनी है कि नहीं कहनी, नमाज में पहले रुकू में जाते हुए रफुल दैन करना नहीं, तो क्या अल्लाह के नबी सिर्फ ये 5-6 सुन्नतें सिखाने आए थे? क्यों नहीं पूछते कि नबी की सुन्नतें, बीबी फातिमा की शादी पे क्या थी? सच बताइए, जिस नबी ने नमाज का तरीका बताया, क्या शादी का तरीका उन्होंने नहीं बताया? बताइए, बल्कि आप सूरत निसा पढ़ लीजिए, सूरत तलाक में देख लीजिए, और कई जगह कुरान में इतनी डिटेल से नमाज का तरीका नहीं है, वुज़ू का तरीका नहीं, जितनी डिटेल से ये आइली कवानीन, निकाह, वली की मौजूदगी, एक शादी कैसे है, कौन पढ़े, जितनी डिटेल से कुरान ने ये मामलात दिए। आज क्या हम सिर्फ नबी के इबादात की सुन्नतों को देखेंगे, आपके जीने की मरने की सुन्नतें नहीं देखेंगे? कि अपने मरे नबी की ज़िंदगी में कोई फौत नहीं हुआ? बहुत सारे हुए। क्या किया उन्होंने? ये भी सुन्नत है, जाके पढ़िए। खदीजा के फौत होने पे नबी ने क्या किया? जाके पढ़िए। अपनी प्यारी बेटियों की वफ़ात के मौके पे क्या किया? एक मिसाल दे देती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लम बदर के लिए गए और बेटी बीमार थी, और जब बदर की फ़तेह मुबीन लेकर वापस आए तो देखा तो उस्मान, जो उस बेटी के शौहर थे, वो बीवी को दफना के वापस आ रहे हैं। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, अल्लाह के नबी के पास उज़र था जंग से रुकने का कि नहीं? भी बेटी बीमार है। आज मैं और आप कितने हल्के हाथों से इस दीन के काम को पकड़ते हैं। कुरान को तो अल्लाह ही एक टिश्यू पेपर की तरह पकड़ते हैं। अगर हम कुरान सीखने भी लग जाएं, हफ्ते में क्लासेस घर में अगर होती और हम आने भी लग जाएं, हफ्ते में दिन दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन, मुझे बताइए हमारी छुट्टियां क्यों होती हैं? आज मेहमान आ रहे हैं, आज बीमार बीमार के खांसी हो रही है, फ्लू हो गया है। यकीन कीजिए अल्लाह के नबी की ये सुन्नत, मैंने एक छोटी सी सीरीज 2 साल पहले कराई थी, मतरूक सुन्नतें, वेब पे मौजूद है, बल्कि मैंने देखा ग्रुप्स में भी गई है। मतरूक सुन्नतें, यानी आज वो सुन्नतें जो लोगों ने अमल करनी छोड़ दी, उसमें एक सुन्नत क्या थी कि आप दीन के काम को प्रायोरिटाइज करते थे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी का तकाजा और दीन का तकाजा जब टकराता था तो क्या हालात थे? आपकी बीवियों की गवाही ले लें, घर में मौजूद हैं, बीवियाँ कहती हैं जब अल्लाह के नबी हमारे घर में होते थे हमें लगता ही नहीं था इतने बड़े इंसान हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शान होती है, बड़ी अलामत है बड़े बंदे की, कि उसको हर वक्त देखकर वो नहीं लग रहा होता कि ये बहुत ज़रा कड़हा है। हम तो ज़रा पगड़ी दस्तार और चीज़ें ले दे के फिरते हैं, तो ये बड़े दीनदार हैं। दीनदार हर वक्त दीनदार नहीं होता कि आप उसके हवा अपने दिमाग पे रखें। घर में आके बीवियों से काम करते, कभी वो आपस में लाड़ कर रही होती तो कहते तुम भी पकड़ के इसके मुंह पे आटा लगा दो, घर में जूते सीने लगते। इतने में मौज़िन की आवाज़ आती है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह, फरमाती हैं हमारे पास से यूं गुजर जाते थे जैसे हमें पहचानते भी नहीं है। किसका तकाजा आया? उसकी कॉल आ गई, हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह। बिस्तर सो रहा है, आराम फरमा रहा है, और अस्सलातु खैरु मिनन नौम का नारा लग गया, अब बिस्तर नहीं है। ये तो छोटी छोटी रोज़ की बातें हैं ना। वैस गदौता मिन अहली का तुबव्वी मकायदल किताल, सूरह आले इमरान में देखिए, जहाँ से गज़वाए उहद का किस्सा है, पहली आयत अल्लाह ने उस किस्से की क्या रखी? वइज़ गदौता, जब आप निकले मिन अहली का अपनी बीवी को छोड़कर अल्लाह के काम के लिए, और आयशा के घर में थे अल्लाह के नबी, क्या पता चला? आपने दीन के काम को अपनी दुनिया की बात पे प्रायोरिटाइज किया। मसलन मैं मिसाल दूँ, आज इस वक्त आपको इधर दीन की दावत थी, आप आएंगे एक छोटी सी मुख्तसर सी एक सादी सी बात सुनेंगे। सेम इस वक्त आपको किसी रिलेटिव के घर से शादी की दावत मिल चुकी होती, बिल्कुल सेम टाइम पे, तो आप किधर जाते? सच बताइए, कितने लोग हैं जो फिर भी इधर आते हैं? देखिए सच बोलना है आपने मैंने, और अपनी ज़िंदगी में ऐसी मिसालें ज़रूर कायम करें। मैं तो कहती हूँ, मुझे कई साथी जो जानते हैं करीब से, मुझे कल भी किसी ने कहा, लोग अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, उनको क्या पता मैं कितने मज़े में हूँ, कहने लगी हमने पाकिस्तान में आने के बाद जो कुछ आप कर रही हैं ये करते किसी को नहीं देखा। हमारे अपने साथी कहते हैं 21वां दिन हो गया, अल्लाह जानता है मुझे जो मज़ा आपसे बात करने में आ रहा है, मैंने यहाँ के कोई उलट सुलट चीज़ें या जो मेरी ज़रूरत की भी होंगी मुझे परवाह ही नहीं है उन चीज़ों की। हाँ आज मैं इधर ना आती, फारिग होती मैं चली जाती, मैंने अगर शॉपिंग करनी है मैं चली जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं, और फारिग रहना अल्लाह का शुक्र है मौका ही नहीं मिलता। जब दो तकाजे मिल जाएं तो आपने दीन को थामना, और अगर आप कुरान तालिबे इल्म है कहीं भी, वल्लाह ही टीचर तो बाद की बात है, अगर आप स्टूडेंट हैं अपने लिए गोल बनाएं, मैंने जो वक्त अल्लाह के लिए क्लास को देना है वो मेरी नमाज है, मैं तो अपने आप पे कहती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसको छोड़ के नफिल नहीं पढ़ूंगी। आप उस वक्त में चाहे खाने पकाएं, दावतें पकाएं, हुकूकुल इबाद करें, मैंने ये नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी की बेटी बीमार है और आप बदर के लिए निकल रहे हैं, और ये मिसाल एक नहीं है, मैं आपको कम से कम अपनी मेमोरी से 5 वाक्यात सुना सकती हूँ जिसमें नबी का ये मेयार है कि आप अल्लाह के काम पे मसरूफ़ हैं और बेटियाँ भी बुला रही हैं, बीवियाँ भी बुला रही हैं, पर आप अपने काम में मसरूफ़ हैं। आपकी बेटी का बच्चा बीमार है, आपकी बेटी का बच्चा कौन हुआ आपका? सच बताएं, बेटी प्यारी होती है कि नवासा? और बेटा प्यारा होता है कि पोता? जब तक पोता नहीं होता तो बेटा, और जब पोता हो जाए तो फिर पोता प्यारा है। आप भी इंसान थे, लेकिन बेटी बार बार बुला रही है कि अब्बा बच्चा बीमार है, लेकिन आप किसी काम में रुके हुए थे। पैगाम दिया, अच्छा, और जब तीसरे पैगाम पे गए तो बच्चा फौत हो चुका है। फिर आपने प्यारी बेटी से कहा कि कहो इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्ल शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब, कि अल्लाह ही का था जो ले गया और जो कुछ उसने दिया ख़ास वक्त के लिए दिया, बस सब्र करो और इस पे अजर की उम्मीद रखो। ये ताज़ियत की दुआ है, कितनों को आती है आज हम में से? आज हम किसी के घर जाते हैं जब ताज़ियत करने, जिसको हमारे यहाँ अफसोस का नाम कहा जाता है, तो लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं। आज जाके पूछिए अपने घर के मर्दों से, खुद भी अगर आपको मौका मिलता है, ये ताज़ियत की दुआ कितने लोग पढ़ते हैं? चलिए, बच्चा बीमार है, फौत हो गया, बेटी क्या कहती? अब्बा आपका तो खून ही सफ़ेद हो गया। आज लोग ज़रा कहते हैं, इनको सारे हकूक़ वाले बात भूल गए हैं जी, ये अब दीन 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 लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो दीन के तकाज़ों को ऊपर रखना। और जब तबूक से वापस आए तो दूसरी बेटी का जनाजा हो रहा है। हम तो छोटी छोटी बात पे, मैं तो कहती हूँ हमने तो अपने लाड जितने देखे इतने तो शायद किसी ने कभी ना देखे हो। तो इस दीन को नाफिज करना है। फिर इसके बाद आप देखिए अगली चीज़ कि इस दीन को अमली तौर पे नाफिज कैसे करेंगे आप और मैं? क्या इस्लामी अदालतें बनेंगी? शरिया लॉ के नाम पे ऑर्डिनेंस पास होंगे? नहीं। इस्लाम नाफिज कब होगा? जब इस घर में जीने मरने सोने जागने से शुरू होके हमारी शादियों के तरीके, हमारी तिजारत, हमारी बेटियां, बहुएं, मर्द, औरतें, उनके ऊपर कुरान अमली तौर पे नाफिज हो चुका होगा। इस पे तो मुझे लगता है अभी बड़ा ही खून जलाने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल फर्ज़ होगा नहीं ऐसा, समझने के लिए, सिर्फ अपने मेमोरी के लिए। अगर दुनिया में भेज दिए जाएं वापस, जाइए ज़रा आप एक चक्कर लगाइए, अपनी उम्मत को देख लें और एक शादी खा के जाएं। खाएं क्या, सिर्फ बाहर से एक चक्कर लगवा दिया जाए? देखिए कड़वी बात है, लेकिन अगर एक पौश घराने की, इन लीड्स की, मुतरफीन की एक शादी की झलक नबी को दिखा दी जाए, मान जाएंगे कि ये मेरी उम्मत के बच्चों की शादी है और ये मेरी उम्मत की बेटियां खड़ी हैं बाल खोल के रिसेप्शन पे, और ये मेरी उम्मत की बेटी है जिसने 4-5 लाख रुपया लगाया आज अपने आप को सजाने के लिए? देखिए बात कड़वी बहुत है, सच है कि नहीं ये बताएं। और ये वो चीज़ है, ये वो सुन्नत है आज के 2-3 महीने, ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे कल्चर में शुरू से कहते हैं ये शादियों के महीने हैं। शायद कोई एक दिन खाली जाता हो जिस दिन हम ये गवाही ना लेकर आए, देकर आए कि या आप शादी पे जाते हैं या आपके बच्चों में कोई जाता है। 3-3, 4-4 दफ़ा जाना पड़ता है एक शादी पे। क्या यहाँ इस्लाम नाफिज हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हमारी शादियों में इस्लाम नाफिज हो रहा है? हमारी तिजारत, देखिए इसके तो 101 एंगल हैं, मैं चूँकि कह चुकी हूँ कि वक्त पूरा हुआ है, हम सिर्फ औरतों से मुतल्लिक ही बातें करेंगे। अगर हमने मर्दों की तिजारत और उनके कमाने और उनके जुम्मे छोड़ छोड़ के कमाने और 5 नमाजों को अपनी मीटिंगों और कारोबार और जॉब के लिए छोड़ना कर दिया, तो फिर बात बड़ी गंभीर हो जाएगी। बस मुझे तो ये छोटी सी बात समझ आई है। खुलासा क्या है जो आज हमने सीखा? कुरान और ज़िंदगी कैसे? पहला, कुरान का मुतालबा खुद रब के बने। आज अगर अल्लाह मेरी आंखें बंद कर दे तो मैं देख नहीं सकूंगी। आज अल्लाह मेरी ज़ुबान को बंद कर दे, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। आईने में खड़े होकर ख़ुद से कहें कि मेरी औकात क्या है, मेरा ज़ोर खुद पे कितना है। जिस दिन मुझे इस दुनिया में अपना वजूद एक कतरे से भी छोटा दिखा ना, उस दिन अंदर से तोकड़ ख़त्म हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, अल्लाह के साथ बंदों को जोड़ना है कुरान के ज़रिए, खुद भी जुड़ना है, दूसरों को जोड़ना है। इसके लिए तालीम लेनी पड़े, तालीम लेंगे, तदरीस करनी पड़े, तदरीस करेंगे, दावा होगा तो दावा होगा। आसान काम एक कर लीजिए, अपने आप को किसी कुरान क्लास का हिस्सा बना लें। माशाल्लाह मुसलमान, गली गली मस्जिद, और मेरा ख्याल है हर इलाके में, यानी जैसे अभी यहाँ माए में गालिबा ये मॉडल टाउन है ना, मेरा गुमान है कि इधर 5-6 कुरान की क्लासेस ज़रूर होंगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होंगी, किसी से भी सीख ले जिसकी बात आपको समझ आती है, कुरान सुन्नत हो, हक बात हो, एक्सट्रीमिज्म ना हो, ना तो बहुत ही आपको ढीला कर दें और ना खींच दें, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रह के जो आज कुरान सिखा रहा है सही सोच के साथ आप जाइए उनसे सीखिए। मैं नहीं कहती आप सब नरुल कुरान पे आ जाएं, जहां आपको जिसकी बात समझ आती सीखे, लेकिन सीखे लफ्जी तर्जमा तो सीख लें, उसमें तो कोई मसलक नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरी बात उससे आगे की, जो तीसरा आखिरी मुतालबा था, हत्तुल वसा इस कुरान पे, इस दीन पे अमल करना, नाफिज करना। हमारी एक टीचर कहा करती थी, जो पढ़ो ना उस पे अमल करो, और मिसाल क्या देती थी, आज सदके की आयतें पढ़ी है ना, तो 54 या 58 कहीं डाल दो, तुम्हें आदत हो जाएगी कि जो पढ़ा उस पे अमल करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर व हसन जज़ा, जिन साथियों ने भी इसको एहतमाम किया अल्लाह ताला उनका कबूल करे। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।